नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम भारद्वाज से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की रिफॉर्म एक्सप्रेस में लगातार तेजी, सकल घरेलू उत्पाद में 7.4% की वृद्धि का अनुमान। केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 के पहले चरण के लिए अधिसूचना की जारी। देश में पहली बार डिजिटल तरीके से होगी जनगणना। राज्य सरकार ने करुणामूलक नियुक्ति से जुड़ी नीति में किया बदलाव। वित्त विभाग ने जारी किया कार्यालय आदेश। एचपीएमसी ने एमआईएस के तहत खरीदे गए सेब के नकद भुगतान से जुड़े अपने आदेशों में किया संशोधन। छोटे बागवानों से नहीं लिया जाएगा राजस्व रिकॉर्ड। और बर्फबारी के बाद से प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप जारी, मैदानी क्षेत्रों में कोहरे का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की रिफॉर्म एक्सप्रेस लगातार गति पकड़ रही है, क्योंकि चालू वित्त वर्ष में देश की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 7.4% की वृद्धि का अनुमान है, जबकि पिछले वित्त वर्ष में ये 6.5% थी। जीडीपी के आंकड़ों पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये वृद्धि एनडीए सरकार के निरंतर निवेश प्रोत्साहन और मांग आधारित नीतिगत उपायों के कारण संभव हो रही है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बुनियादी ढांचागत विकास, विनिर्माण प्रोत्साहन, डिजिटल सार्वजनिक वस्तुएं और व्यापार में सुगमता जैसे क्षेत्रों में किए जा रहे प्रयास एक समृद्ध भारत के सपने को साकार करने की दिशा में लक्षित है। केंद्रीय बजट में घोषित आयकर छूट और उसके बाद वस्तुओं तथा सेवाओं पर जीएसटी दरों में कटौती के कारण वित्त वर्ष 2025-26 में वास्तविक निजी अंतिम उपभोग व्यय में 7% की वृद्धि का अनुमान है। केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 के पहले चरण के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इस साल 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 30 दिनों की अवधि में घरों की गिनती का काम किया जाएगा। गृह मंत्रालय से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के तय कार्यक्रमों के अनुसार घरों की गिनती शुरू होने से 15 दिन पहले स्वयं की गिनती की सुविधा उपलब्ध होगी। देश में पहली बार डिजिटल तरीके से जनगणना की जाएगी। जनगणना 2 चरणों में होगी। पहले चरण में अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच घरों की सूची बनाने के साथ ही इसकी गणना की जाएगी। दूसरे चरण के तहत फरवरी 2027 में जनगणना की गणना होगी। पेश है ये रिपोर्ट।
केंद्र सरकार ने भारत की जनगणना 2027 के पहले चरण के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इस साल 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 30 दिनों की अवधि में घरों की गिनती का काम किया जाएगा। देश में पहली बार डिजिटल तरीके से जनगणना की जाएगी। इसके तहत ये आंकड़े एंड्रॉयड मोबाइल के साथ साथ iOS वर्जन से एकत्रित किए जाएंगे। जनगणना का आंकड़ा जमा करने के लिए 30 लाख कर्मचारी तैनात किए जाएंगे। जनगणना 2 चरणों में होगी। पहले चरण में अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच घरों की सूची बनाने के साथ ही इसकी गणना की जाएगी। दूसरे चरण के तहत फरवरी 2027 में जनसंख्या की गणना होगी। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख तथा जम्मू कश्मीर और बर्फ से ढके हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड राज्यों के लिए जनसंख्या की गणना इस साल सितंबर में की जाएगी।
प्रदेश सरकार ने करुणामूलक नियुक्ति से जुड़ी नीति में कुछ बदलाव किए हैं। ये बदलाव उन लोगों के लिए है जिन्हें सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद सहायता के रूप में नौकरी दी जाती है। वित्त विभाग ने इस बारे में कार्यालय आदेश जारी किए हैं। इसके तहत अब करुणामूलक आधार पर नौकरी देने का अधिकार संबंधित विभाग के पास ही रहेगा, लेकिन जूनियर ऑफिस सहायक आईटी के पद के लिए एक अलग तरीका तय किया गया है। इसमें संबंधित विभाग पहले सभी जरूरी कागजात और योग्यता की जाँच करेगा। इसके बाद उम्मीदवार का मामला कार्मिक विभाग के भर्ती निदेशालय को भेजा जाएगा। भर्ती निदेशालय की मंजूरी मिलने के बाद ही नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इस बदलाव से भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और सभी जगह एक ही नियम लागू होंगे। ग्रामीण परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने पर केंद्रीय भारत सरकार की VBG रामजी योजना आकांक्षी जिला चंबा के लोगों के लिए भी फायदेमंद साबित होगी। इस योजना का स्वागत करते हुए ग्रामीण परिवेश से संबंधित जिला वासियों के अनुसार भारत सरकार की इस VBG रामजी योजना से आने वाले समय में ग्रामीण इलाकों की तस्वीर ही बदल जाएगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIR_News_Shimla और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज पर लॉग इन कर सकते हैं। एचपीएमसी ने एमआईएस के तहत पिछले साल खरीदे गए सेब के नगद भुगतान से जुड़े अपने आदेशों में संशोधन किया है। नए निर्देशों के अनुसार अब छोटे बागवानों से राजस्व रिकॉर्ड लेना अनिवार्य नहीं होगा। संशोधित आदेशों के तहत केवल उन्हीं बागवानों से राजस्व रिकॉर्ड लिया जाएगा जिनकी फलों की आपूर्ति 100 से अधिक सेब की बोरियों की होगी। इस संबंध में एचपीएमसी के प्रबंध निदेशक ने आदेश जारी किए हैं। एचपीएमसी ने हाल ही में जारी आदेशों के तहत एमआईएस के तहत खरीदे गए सेब की पेमेंट के लिए राजस्व दस्तावेज अनिवार्य कर दिए थे। सरकार का तर्क था कि इससे पारदर्शिता बनी रहेगी और यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि बागवान अपनी भूमि से अधिक मात्रा में सेब की आपूर्ति न करे। बागवानों, बागवानी संगठनों और विपक्षी दल भाजपा ने इस फैसले का कड़ा विरोध किया था, जिसके बाद निगम ने अपने आदेशों में संशोधन किया है। एचपीएमसी ने शिमला, कुल्लू और कांगड़ा के सभी क्षेत्रीय एवं शाखा प्रबंधकों को नए निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा है। बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के साधन उपलब्ध करवाने के साथ साथ प्रदेश के पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए राज्य सरकार द्वारा आरंभ की गई राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना बेरोजगारों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। हमीरपुर जिला के भूमपल गांव के रमेश कुमार और मझियार गांव के नजीरदीन को इस योजना से काफी लाभ मिला है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत ई टैक्सी खरीदने के लिए प्रदेश सरकार ने 50% सब्सिडी प्रदान की, जिससे इनकी आर्थिक मजबूती हुई है।
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में हिमाचल सरकार ने जब राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना की शुरुआत की तो रमेश और नसीरुद्दीन को तो जैसे बहुत बड़ा सहारा मिल गया। प्रदेश सरकार ने भारी भरकम सब्सिडी ही नहीं बल्कि इस योजना के तहत ई टैक्सी के लिए स्थायी रूप से काम देने का भी प्रावधान कर दिया। रमेश की इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी को जल विभाग के फोरिन उपमंडल और नसीरुद्दीन की गाड़ी को क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यालय हमीरपुर के साथ अटैच कर दिया गया। यानी इन दोनों वाहन मालिकों एवं चालकों की कारोबार की चिंता भी सरकार ने दूर कर दी। योजना की बार बार प्रशंसा और प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त करते हुए रमेश कुमार तथा नसीरुद्दीन का कहना है कि इससे उन्हें व्यक्तिगत रूप से डबल फायदा हुआ है। हिमाचल को प्रदूषण मुक्त एवं हरित राज्य बनाने की दिशा में भी ये योजना एक मील का पत्थर साबित होने जा रही है। आकाशवाणी के लिए हमीरपुर से मैं हरीश नंदा।
प्रदेश में बदले मौसम के बीच बीते दो दिनों से ऊंची चोटियों पर हल्का हिमपात दर्ज किया गया है। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान लाहौल स्पीति जिले के कोकसर में हल्की बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के बाद से प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है। हालांकि राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज दिन की शुरुआत खिली धूप के साथ हुई है, जबकि बिलासपुर, ऊना, मंडी, हमीरपुर, कांगड़ा, सोलन, सिरमौर में सुबह और शाम के समय कोहरा छाया रहा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार इन क्षेत्रों में 10 जनवरी तक कोहरा छाए रहने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। और अब सुर्खियां समाचार पत्रों से। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हवाले से लिखा है, डॉक्टरों के लिए नई सीनियर रेजिडेंटशिप पॉलिसी बनेगी, 66% होगा जीडीओ कोटा। पंजाब केसरी का शीर्षक है, जुनगा के 200 वर्ष पुराने राजमहल में लगी आग, ऊपरी हिस्सा राख। मौसम की खबर को दैनिक भास्कर ने शीर्षक दिया है, इस हफ्ते साफ रहेगा मौसम, मैदानी क्षेत्रों में जारी रहेगा कोहरे का कोहराम। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की रिफॉर्म एक्सप्रेस में लगातार तेजी, सकल घरेलू उत्पाद में 7.4% की वृद्धि का अनुमान। केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 के पहले चरण के लिए अधिसूचना की जारी, देश में पहली बार डिजिटल तरीके से होगी जनगणना। राज्य सरकार ने करुणामूलक नियुक्ति से जुड़ी नीति में किया बदलाव, वित्त विभाग ने जारी किया कार्यालय आदेश। एचपीएमसी ने एमआईएस के तहत खरीदे सेब के नगद भुगतान से जुड़े अपने आदेशों में किया संशोधन, छोटे बागवानों से नहीं लिया जाएगा राजस्व रिकॉर्ड। और बर्फबारी के बाद से प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप जारी, मैदानी क्षेत्रों में कोहरे का अलर्ट। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।